नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन सुरक्षा कर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अन्य सांसदों ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र उन नायकों के साहस, वीरता और बलिदान को नमन करता है जिनकी कर्तव्य निष्ठा भारत की राष्ट्रीय भावना को निरंतर मार्गदर्शन देती है। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने कहा कि भीषण खतरे के बीच उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा सराहनीय थी। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के उस समय के अदम्य साहस और वीरता को याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद पर कायराना आतंकी हमले के दौरान वीर सुरक्षा बलों ने अटूट सुरक्षा कवच तैयार किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनके अदम्य साहस ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों को जड़ से उखाड़ फेंकने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को बल दिया है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान ने देश के लोकतंत्र और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी ये यात्रा जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रही है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम एशिया में क्षेत्र स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कल निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला खंडों की नीलामी नीति कोल सेतु को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में बताया कि जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2026 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दे दी है।
कोपरा के लिए एमएसपी का अप्रूवल हुआ है। मिलिंग कोपरा का 12,027 पर क्विंटल रखा गया है एंड फॉर बॉल कोपरा द प्राइस व्हिच इज अप्रूव्ड इज 12,500 रुपीस पर क्विंटल।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल हमेशा तैयार और प्रासंगिक बने रहने के बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है। हैदराबाद के पास दुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 216वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड में जनरल चौहान ने कहा कि भारत की ताकत मजबूत संस्थानों, लोकतांत्रिक स्थिरता और सशस्त्र बलों की अटूट व्यावसायिकता पर टिकी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला के समीप मझठाई में भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वंशावली, माता पिता या रिश्तेदारों के नामों के आधार पर नए मतदाताओं की पहचान करते समय 2002 की मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। एसआईआर का पहला चरण समाप्त हो चुका है। निर्वाचन आयोग प्रस्तुत प्रपत्रों की निरंतर जाँच और दोबारा छानबीन कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में 58 लाख से अधिक जनगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इन मतदाताओं के नाम अस्थायी रूप से मसौदा सूची से हटा दिए जाएंगे। चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन मिस्र से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।